नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 अप्रैल का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मैं विनीता ठाकुर
और मैं हूँ मुनीश शर्मा।
श्रोताओं, देश के युवा महिलाएं जो खुद के प्रयास से कुछ करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार की क्रांतिकारी योजना मुद्रा एक बड़ा अवसर बन गई है। ये केवल स्वरोजगार का ही अवसर पैदा नहीं कर रहा, बल्कि रोजगार प्रदाता भी बना दिया है। मुद्रा को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयास और नीतियों से लाखों MSME अब औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। इससे उन्हें अधिक ब्याज दरों पर ऋण देने वाले साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलने में मदद मिली है। साथ ही इस योजना से जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजन करने में मदद मिली है। मुद्रा योजना आज विनिर्माण, सेवा, खुदरा और संबद्ध गतिविधियों में आय के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करके उद्यमों के लिए कल्याण सुनिश्चित कर रही है। विकसित भारत के संकल्पों में एक महत्वपूर्ण आधार बनी मुद्रा योजना ही इस बार हमारे अंक की आवरण कथा बनी है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में स्वच्छता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय और पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं इनसाइड में 5 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय समुद्री दिवस और बैक कवर पर 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती इस अंक की विशेषता है।
सहकारिता से समृद्धि के मिशन के साथ जुलाई 2021 में एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया, तो वैश्विक साझेदारी के साथ इस दिशा में और मजबूत पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कड़ी में सहकारिता क्षेत्र की समीक्षा में एक नया मंत्र दिया। सहकारिता आत्मनिर्भरता की सबसे सुंदर व्याख्या है, तो देश के अन्नदाता को समृद्ध बनाने का सशक्त माध्यम भी है। भारत में सहकार से समृद्धि के सिद्धांत पर आधारित सहकारिता मॉडल न सिर्फ समावेशी है, बल्कि हर गांव तक पहुंचने के साथ इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक बंधनों को भी मजबूत करना है। अब इसे और मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सहकारिता क्षेत्र के विस्तार के लिए वैश्विक संगठनों के साथ साझेदारी की आवश्यकता और सहकारिता संगठनों के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।
साथ ही पीएम मोदी ने वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए UPI को रुपे KCC कार्ड के साथ एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला और सहकारिता संगठनों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर जोर दिया। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र में कृषि और संबंधित गतिविधियों का विस्तार करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर AgriStack के इस्तेमाल का सुझाव दिया। इससे कृषि क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं तक किसान की पहुंच और आसान हो सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल, कॉलेज और भारतीय प्रबंधन संस्थानों IIM में सहकारिता पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने का भी प्रस्ताव रखा।
वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग में सस्टेनेबिलिटी के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। कार्यशाला के दौरान कई राज्यों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहकारिता क्षेत्र पर कार्यशाला की सभी जानकारियां पत्रिका में शामिल की गई हैं।
हरे भरे जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां, कल कल बहती नदियां और आस्था से भरी घाटियों के साथ देवों की भूमि उत्तराखंड बरबस ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चार धाम परियोजना हो या पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं का विकास, अवसरों की ये भूमि हर दिन विकास के नए आयाम लिख रही है। शीतकालीन पर्यटन के साथ उत्तराखंड अब संभावनाओं के नए द्वार पर दस्तक दे रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान करते हुए कहा कि प्रकृति के गोद में बसे इस राज्य में पर्यटकों के लिए कोई ऑफ सीजन न हो। उत्तराखंड सरकार पिछले कुछ वर्षों में विकास के नए आयाम लिखने में लगी है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से भरपूर मदद मिल रही है। इको टूरिज्म से लेकर चार धाम दिव्य स्थल तक, माउंटेन बाइकिंग से लेकर रॉक क्लाइंबिंग तक, स्केटिंग से लेकर बर्फ पर खेले जाने वाले खेल तक सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है।
पिछले 10 साल में सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए करोड़ों रुपए का निवेश किया, जिसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयास का ये नतीजा है कि उत्तराखंड में पर्यटन से लेकर रोजगार तक के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई गई सुविधा की वजह से जहां 2014 से पहले औसतन 18 लाख तीर्थयात्री सालाना चार धाम यात्रा पर आते थे, वो अब बढ़कर लगभग 50 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के हर्षिल में आयोजित शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में कहा कि पर्यटन क्षेत्र में विविधता को लाना और इसे साल भर चलने वाली गतिविधि बनाना उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी और प्रधानमंत्री की अपील पत्रिका में शामिल है।
गरीबी को खत्म करने की दिशा में निरंतर प्रयासों की प्रतिबद्धता आज नए भारत की पहचान बनी है, तो विकास के केंद्र में महिलाओं का सशक्तिकरण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2014 में इसके लिए विशेष प्रयास शुरू किया, तो इन्हें केंद्र में रखकर तैयार की गई योजनाओं ने मील के कई पत्थर पार किए, लेकिन प्रयासों का सिलसिला अब नए मापदंडों के साथ लक्ष्य से कहीं आगे बढ़ चला है। बीते दशक के इन्हीं प्रयासों के साथ भविष्य की दशा और दिशा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर किया, जहां सूरत में उन्होंने खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की, तो वहीं नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखपति दीदियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, आइए सुनते हैं।
गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। गांधी जी के कि देश नो आत्मा भारत ना गामड़ा में। आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं, ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। देश की इस आर्थिक प्रगति को जो नींव है, वो आप जैसी करोड़ों महिलाओं ने ही रखी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अहम भूमिका है। आज देश की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है, स्व सहायता समूह। इनमें से 3 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अकेले गुजरात में काम कर रहे हैं। हमने देश की आर्थिक प्रगति के लिए इन करोड़ों महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लिया। हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी है। अगले 5 वर्षों में हम कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं, और जिस तेजी से बहनें काम कर रही है, उसे तो लगता है शायद हमें इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही हो जाए।
श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर भी 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहे, और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक के दौरान राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने वन्य जीव संरक्षण में सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की। उन्होंने चीता को मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों सहित अन्य क्षेत्रों में लाए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव रेफरल सेंटर की आधारशिला भी रखी, जो वन्य जीव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के समन्वय और प्रशासन के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की सभी जानकारियां और जरूरतमंदों की सशक्तिकरण की रिपोर्ट पत्रिका में शामिल है।
दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट देने वाला भारत आज अनंत इनोवेशन की धरती बन रहा है। यही वजह है कि भारत आज विश्व की नई फैक्ट्री के रूप में उभर रहा है। अब देश के लोग सिर्फ कार्यबल नहीं बल्कि विश्व शक्ति हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनेक्सिटी कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आकांक्षा हर वैश्विक मंच पर अपना परचम लहराते देखना है, और इसी सोच के साथ देश आगे बढ़ रहा है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना और संकल्प हर नागरिक एवं उद्यमी में होना चाहिए। कॉन्क्लेव में पीएम मोदी का किन बातों पर फोकस रहा, ये आप पत्रिका पढ़कर विस्तार से जान सकते हैं।
करीबी समुद्री पड़ोसी हिंद महासागर में एक प्रमुख साझेदार और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले मॉरिशस के साथ भारत का ऐतिहासिक भौगोलिक और मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है। सुनहरे अतीत की नींव पर आधारित इन रिश्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा ने एक और नया उज्ज्वल अध्याय जोड़ा। भारत और मॉरिशस सिर्फ इतिहास से नहीं जुड़े हैं बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच गहरे लगाव को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 70% हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मॉरिशस आजाद तो वर्ष 1968 में हो गया, लेकिन भारत ने 1948 से ही मॉरिशस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आत्मीय रिश्ते का जिक्र भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए किया। भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन GCSK प्रदान किया। प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा से जुड़ी सभी अहम जानकारियां पत्रिका में शामिल हैं।
बिहार की पावन माटी में जन्मा एक बच्चा जिसके खुद के घर में शौचालय नहीं था। शौच के लिए परिवार की महिलाओं के घर से बाहर जाने की मजबूरी ने उसे आगे चलकर देश में शौचालय क्रांति का जनक बना दिया। उनका नाम है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए सुलभ स्वच्छता कॉम्प्लेक्स की उनकी सोच 2014 में उस जन आंदोलन की प्रेरणा भी बनी, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के रूप में स्वच्छता को बनाया जन आंदोलन।
एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में जन्मे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की स्वच्छता से लगाव की कहानी 6 साल की उस उम्र से शुरू होती है जो आमतौर पर खेल खिलौनों और कहानियों की उम्र कही जाती है। एक दिन अचानक उन्होंने एक ऐसी महिला को छू लिया जिसे संकीर्ण सोच भरे समाज में कथित तौर पर अछूत कहकर पुकारा जाता था। दादी ने दंडित किया, घर वाले नाराज हुए, लेकिन बच्चे के बाल मन में इसे लेकर कई सवाल खड़े हुए। इन घटनाओं ने उन पर ऐसा असर डाला कि बड़े होकर उन्होंने स्वच्छता को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। व्यक्तित्व की श्रेणी में इस अंक में उनकी प्रेरणादायी जीवन गाथा को पढ़ा जा सकता है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा
और मैं विनीता।
दीजिए इजाजत।
नमस्कार।